भूमिका। जब मैं यशपाल के संपर्क में आया, वे साठ को पहुंच रहे थे। तब तक वे अपना सर्वश्रेष्ठ लिख चुके थे। साहित्य में उनके प्रशंसकों और विरोधियों की कमी तब भी नहीं थी जैसी वह कभी नहीं रही। परिमल और उससे जुड़े मार्क्सवाद विरोधी आलोचक तो उन्हें नकार ही रहे थे। मार्क्सवादियों में भी जो तब शीर्ष पर थे, रामविलास शर्मा, अमृत राय, चंद्रमणि सिंह आदि, वे भी यशपाल की सिख नैतिकता और राजनीति को लेकर अतिरंजित और एकांगी बयान जारी कर रहे थे, उनके सकारात्मक पक्षों की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए। मार्क्सवादियों में सिर्फ प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान ही ऐसे थे जो उनका संतुलित मूल्यांकन कर रहे थे। लेकिन यशपाल के साहित्य की विपुलता और उनकी सक्रियता को देखते हुए वह बहुत अपर्याप्त था। भगवत शरण उपाध्याय की स्थिति मध्यमार्गी थी। यदि दिव्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सच्ची झूठी असंगतियों को आधार बनाकर वे अपनी कटु आलोचना कर रहे थे, लगभग वैसी ही जैसे परवर्ती दौर में उन्होंने दिनकर की उर्वशी पर कल्पना में अपनी अत्यंत विवादास्पद समीक्षा लिखी। देशद्रोही और मनुष्य के रूप जैसे उनके उपन्यासों के वे सामान्यतः प्रशंसक थे। अपना उपन्यास कालिदास उन्होंने यशपाल को ही समर्पित किया था। नामवर सिंह पूरी तरह कविता के आलोचक ही बने रहे और अपनी कहानी आलोचना के दौर में भी कहानियों के पाठ विश्लेषण के लिए जब उन्होंने प्रेमचंद से लेकर निर्मल वर्मा तक की कहानियां चुनी, उसमें यशपाल कहीं नहीं थे। यशपाल पर कभी उन्होंने कुछ लिखा हो मुझे याद नहीं। नई कहानी के लेखकों ने यशपाल के सामाजिक राजनीतिक सरोकारों की उपेक्षा तो की ही, स्त्री के संदर्भ में भी यशपाल की लौकिक और हाणमास की नारी को अपना प्रस्थान बिंदु मानकर उनके प्रति कैसी भी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। यह आपाधापी का वह दौर था जब लोग प्रेमचंद को भी पीछे ठेल कर सिर्फ अपने को ही जमाने में लगे थे। ऐसे में यशपाल को कौन पूछता। इन्हीं परिस्थितियों में यशपाल पर मैंने अपनी लहर वाली टिप्पणी सन 62 में लिखी थी। उस टिप्पणी ने एक तरह से यशपाल से मेरी आलोचना का रिश्ता भी तय कर दिया। बड़े आलोचकों के विरोध और अपेक्षा से आहत यशपाल को मेरी इस टिप्पणी में शायद आशा की कुछ किरण दिखाई दी हो। उस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए तब उन्होंने कलकत्ता के छेदीलाल गुप्त की रूपलेखा में डॉक्टर रामविलास शर्मा के यशपाल जी और अश्लीलता शीर्षक लेख के उत्तर में मुझसे ही लिखवाने का सुझाव दिया था। छेदीलाल गुप्त को लिखित अपने पत्र की प्रतिलिपि मुझे लिखे अपने पत्र के साथ उन्होंने लहर के मार्फत ही मुझे भिजवाई थी। दो बड़ों के बहस में न कूदने का संयम तब भी मैंने बरता था, लेकिन उत्तर में यशपाल को यह अवश्य लिखा था कि मेरी वह टिप्पणी एक बड़े काम की शुरुआत है और आगे कभी मैं विस्तारपूर्वक उन पर काम करूँगा। मेरी इस टिप्पणी ने मेरे लिए सबसे बड़ा काम यह किया कि काफ़ी कुछ मुझे यशपाल का एक संभावित प्रामाणिक और विश्वसनीय भाष्यकार बना दिया। यशपाल ने सन 63 में 12 घंटे के ब्लर्ब के रूप में मेरा भी अभिमत छापा और आगे अपनी अनेक रचनाएं प्रकाशन के पूर्व मेरी सम्मति और सुझाव के लिए भिजवाईं। वे प्रायः ही मेरे सुझाव पर अमल करते थे। मेरे सुझाव पर ही उन्होंने अपने उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन के बाद न सिर्फ यह कि उसका शीर्षक बदला, मेरा सुझाया शीर्षक भी स्वीकार किया। एक अन्य उपन्यास की सप्लाई रोककर जिसे प्रकाशन के पूर्व उन्होंने मुझे दिखाया नहीं था, मेरी आपत्ति पर उसका अंतिम अंश नए सिरे से लिखा था। मेरी लिखी आलोचना पर वे विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और मेरी जिज्ञासाओं के उत्तर में जो पत्र लिखे उसका प्रमाण यशपाल के पत्र है। चाहे साहित्य अकादमी की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन लिटरेचर हो या फिर नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा मनुष्य के रूप को समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए चुने जाने पर उसकी भूमिका लेखन का प्रश्न, यशपाल ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया। सन 75 में नामवर सिंह का मुझे लिखा हुआ पत्र अभी भी याद है, जिसमें यशपाल के दिल्ली जाने पर, शायद वही दिल्ली की उनकी अंतिम यात्रा थी, मेरी तेरी उसकी बात पर आलोचना के लिए लिखी जाने वाली मेरी प्रतीक्षित समीक्षा का उल्लेख करते हुए यशपाल की आंखों में मेरे लिए उनके घर स्नेह का जिक्र भी किया था। दरअसल यशपाल पर ऐसी किसी पुस्तक की योजना बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं न कि समय से पहले कुछ नहीं होता। अब यशपाल के शताब्दी वर्ष में ही उसे शायद होना था। किसी न किसी रूप में यशपाल पर मेरी चौथी पुस्तक है। इससे बाहर भी उनसे संबंधित कुछ अन्य योजनाओं पर मैं काम कर रहा हूँ। उनमें भारतीय लेखक के यशपाल विशेषांक और साहित्य अकादमी के लिए यशपाल रचना संचयन का उल्लेख खास तौर से किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह कह पाना मुश्किल है कि यशपाल पर जो कुछ मुझे करना था कर लिया है। इस पुस्तक के संबंध में अलग से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यशपाल के संबंध में शायद उसे प्रमाणिक और विश्वसनीय मानकर चला जा सके। इसे भी दोहराना चाहूँगा कि विप्लव और यशपाल के वैचारिक लेखन को छोड़कर यशपाल को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव की तरफ सपने वे भी देखते थे, लेकिन उनके सपनों में नए समाज की जो कल्पना झिलमिलाती थी उसके ब्लूप्रिंट की गंभीर और तार्किक परिणति को उनके वैचारिक साहित्य को छोड़कर समझ पाना मुश्किल है। इस संपूर्णता में यशपाल को समझने की कोशिश में ही शायद यह कहने लगे कि हमने उन्हें उससे भिन्न रूप में जाना और पाया है जिसमें अब तक उन्हें जानते रहे थे। इस काम में शायद इस पुस्तक से भी कुछ मदद मिल सके। फिलहाल आगे के लिए और बहुत कुछ करने का काम औरों पर छोड़ा जा सकता है। मधुरेश।